को आप इस वैसे समझ लीजिए, मेरी व्याख्या यह है कि स्कूल कॉलेजों को छोड़कर बाहर विद्यार्थी हैं। सोचने की बात यह है कि इस देश में आज हम जिस परिस्थिति में रह रहे हैं वो परिस्थिति क्या है, और इसके लिए जिम्मेवार कौन है। मैं प्रौढ़ विद्यार्थियों के सामने बोल रहा हूं, और प्रौढ़ विद्यार्थियों की अब यह मांग है कि उनको सिटीजन माना जाए, वोट का अधिकार उनको दिया जाए। तो मैं प्रोस्पेक्टिव या एक्चुअल, यानी जो आज यथार्थ में नागरिक हैं या नागरिक बहुत जल्दी बनने वाले हैं, उन तरुणों से बोल रहा हूं, क्या वो इस देश को अपना देश मानते हैं? इसका जवाब मुझे नहीं चाहिए, वो अपने से इस प्रश्न को पूछें। क्या आज के तरुणों में ऐसे कोई तरुण हैं जिनका मानसिकता ऑल इंडिया है, अखिल भारतीय है? मैं सब जगह घूमता हूं, मुझे ऐसे तरुण अब दिखाई नहीं देते, ऐसे विद्यार्थी जो अखिल भारतीय मनोवृत्ति जिनकी हो, यानी भारतवर्ष के आकार का जिनका चित्त हो। इस संस्था का नाम लोक भारती है, लेकिन वो लोक कहां है जिसकी ये भारती है? वो लोक कौन है जिसकी ये भारती है? यह आपने मुझसे प्रश्न बहुत से पूछे, ये प्रश्न मैं विचार के लिए रख रहा हूं। हर युग में जितने प्रश्न होते हैं उतने उत्तर नहीं होते। सारे प्रश्नों के उत्तर अगर मिल जाए तो जीवन समाप्त हो जाएगा। प्रश्न रह जाते हैं, और प्रश्न प्रश्न ही रहते हैं, इसलिए जीवन की प्रगति होती है, जीवन आगे आगे बढ़ता है। तो सवाल एक पूछा है ना इसमें कि हमारी समस्याओं के लिए जिम्मेवार कौन है, तरुण है कि पुरानी पीढ़ी है? पुरानी पीढ़ी जिम्मेवार है और नालायक है, दोनों है। और ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, विनोद में नहीं कह रहा हूं, ये सीरियसली कह रहा हूं। और नई पीढ़ी गैर जिम्मेवार है, वो जिम्मेवार नहीं है, इतना ही नहीं, गैर जिम्मेवार है, क्योंकि वो सारी की सारी जिम्मेवारी या तो अपने माँ बाप पर डालती है या सरकार पर डालती है या दूसरे किसी पर डालती है सिवा अपने। आज की तरुण पीढ़ी के व्याकरण में प्रथम पुरुष है ही नहीं। द्वितीय पुरुष है, तृतीय पुरुष है। मित्रों, यह हमारे देश की मुख्य बीमारी है। इस देश के मनुष्य ने अपने जीवन के लिए अपने को जिम्मेवार कभी नहीं माना, और ये बहुत बड़ा विरोध है। एक तरफ तो वो कहता है कि ये मेरे कर्मों का फल है, और दूसरी तरफ उस कर्म को अपने से अलग मानता है जो फल देता है। बेटा क्यों मर गया? कर्म ऐसा था। तुम अपड़ क्यों रह गए? कर्म ऐसा था। तुम गरीब क्यों हो? हमारा कर्म ही ऐसा था। यानी कर्म को अपने से अलग एक स्वतंत्र सत्ता वो मान लेता है, उसका कर्म उसका दैव बन जाता है। तो पुरानी पीढ़ी भी जाने दीजिए, नई पीढ़ी भी जाने दीजिए, इस देश की सारी समस्याओं के लिए जिम्मेवार दैव है, मनुष्य है ही नहीं। और दैव के बाद राजा है। या तो दैव है या राजा है। रामचंद्र के राज्य में एक ब्राह्मण का जवान बेटा बूढ़े ब्राह्मण का मर गया, रामचंद्र के दरबार में लाकर उसको डाला। मेरा बेटा मर गया, तू जिम्मेवार है। आज हम सब कहते हैं मेरे बेटे को खांसी हुई, सरकार जिम्मेवार है। मेरे घर में सफाई नहीं है, ये सरकार ही ऐसी है। तो इस देश का मनुष्य दैव निर्भर रहा है, राज्य निर्भर रहा है, लोक निर्भर कभी नहीं रहा। यह आपका काम है। मुझसे पूछा है कि तरुण अपनी शक्ति किस बात में खर्च करें। पहले ये देख लें कि शक्ति अपने पास है कि नहीं। अगर शक्ति है तो उसका उपयोग इसमें हो कि अपनी जिम्मेवारी आप पहचाने। लड़के कॉलेजों में जाते हैं, पढ़ाई करना नहीं चाहते। जितनी उपस्थिति हाजिरी टाल सकते हैं उतनी टालते हैं। कभी हाजिरी लिखा देते हैं और सिनेमा में चले जाते हैं। ये सब वो क्यों करते हैं? उनका यह पक्का विश्वास है कि मैं अपने लिए नहीं पढ़ रहा हूं, अपने माँ बाप के लिए पढ़ रहा हूं और सरकार के लिए पढ़ रहा हूं। तो जो काम अपने लिए नहीं है, जिस बेगार का काम है, उसको टालने की कोशिश हर एक करता है। इसलिए हमारे देश के शिक्षण में प्राण नहीं आ रहा है। किसी लड़के से आप कहिए कि सिनेमा जाने से स्ट्राइक करो, वो कहेगा क्या? कभी हड़ताल। जहां उसको आनंद आता है, जिसमें उसकी रुचि है, उसमें हड़ताल नहीं होती। जो अपना काम होता है उसमें हड़ताल नहीं होती। हड़ताल क्या गुजराती में संप कहते हैं? क्या कहते हैं? हड़ताल कहते हैं। हड़ताल उस काम में होती है जो अपना काम नहीं होता। आज के विद्यार्थी का विद्यार्जन अपना काम नहीं है, वो दूसरों के लिए पढ़ता है, अपने लिए नहीं सीखता। तो अब क्या करें, वो मुझसे पूछते हो, तो मैं उनसे ये निवेदन करूंगा, ये कहूंगा कि जो वो चाहते हैं वो करें। अगर पढ़ना नहीं चाहते हैं तो पढ़ना बंद कर दें। लेकिन एक तरफ तो वो स्ट्राइक करता है और कॉलेज शुरू होते ही उसका क्यों लग जाता है एडमिशन के लिए, प्रवेश के लिए, मेरी समझ में ये बात नहीं आती। मैंने कहा कि गैर जिम्मेवार है, इसका कारण यह है कि वो इस विरोध को क्यों नहीं समझ रहा है। यूनिवर्सिटी की मांग हो रही है जगह जगह। अभी मध्य प्रदेश में भोपाल में विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ा मोर्चा निकला, किस लिए कि यहां पर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी चाहिए। किस लिए चाहिए? कांच फोड़ने के लिए और इमारतें जलाने के लिए, दूसरा कोई इसका प्रयोजन नहीं है। मित्रों, मेरी सारे विद्यार्थियों से पहली प्रार्थना यह है कि अपने जीवन के बारे में सीरियस बने, अपने जीवन को अपना समझे, माँ बाप का नहीं, सरकार का नहीं, दूसरे किसी का नहीं। मेरा जीवन मेरा अपना है, इसके लिए जिम्मेवार मैं हूं। ये पहली चीज उनको सीखनी चाहिए। मैं प्रौढ़ विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं, जो वो नहीं सीख रहे हैं। और जब वो मां बाप हो जाएंगे तब उनकी सारी मनोवृत्ति बदल जाएगी। शिक्षण संस्थाओं के संचालकों से, सरकार से और मां बाप से मुझे यह कहना है कि विद्यार्थी जो करना चाहे वो करें, उनको यह संस्थाएं सौंप दीजिए, उनको वास्तविकता का मुकाबला करने दीजिए। जीवन का के सन्मुख उनको खड़ा होने दीजिए, जीवन की अभिमुखता आवश्यक है। दूसरा एक सवाल इसमें आया है जो इसी के सिलसिले में, उसको सोचने की आवश्यकता है। पश्चिम का आकर्षण क्यों है? संस्थाएं गांधी की हैं, आकर्षण पश्चिम का है, वो क्यों है? मूल में गांधी का आकर्षण किस लिए था? क्या गांधी का आकर्षण उसकी लंगोटी के लिए किसी को था? क्या गांधी का आकर्षण उसकी कड़वी नीम की चटनी के लिए किसी को था? क्या गांधी का आकर्षण किसी को इसलिए था कि उसने वो बैरिस्टरी छोड़कर महात्मा बन गया? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इनमें से किसी का आकर्षण नहीं था, कम से कम मुझे तो था ही नहीं, नहीं तो मैं भी यहां लंगूटी लगा कर आता और कड़वी नीम की चटनी खाता। गांधी का आकर्षण इसलिए नहीं था, गांधी का आकर्षण इसलिए था कि वो इस देश के दुखी मनुष्य को सुखी बनाना चाहता। यहां के मनुष्य के दुख से वो दुखी होता था, इसलिए उसका आकर्षण था। लंगोटी वाले तो हमारे देश में साधु भी हैं और भिखारी भी हैं। कड़वे नीम की चटनी और कच्चा करेला खाने वाले हमारे देश में बहुत हैं, कम नहीं है।
लेकिन गांधी का मुख्य आकर्षण इस बात में था कि इस देश के लंगोटी वाले को, उसके शरीर को वो ढकना चाहता था, इस देश के भूखे को वो अन्न दिलाना चाहता था, इस देश के सड़क पर जीने वाले के लिए मकान बनाने की योजना करता था। ये सारी प्रेरणाएं भौतिक प्रेरणाएं, इनमें से कोई प्रेरणा आध्यात्मिक नहीं। एक मित्र ने अभी मुझसे पूछा था कि हम गांधी की संस्थाओं में हैं लेकिन हमने कोई आध्यात्मिक प्रेरणा नहीं है। मित्रों, आध्यात्मिक प्रेरणा होती तो श्री अरविंद के आश्रम में जाते, रमण महर्षि के पीछे जाते। आध्यात्मिक प्रेरणा होती तो कृष्णमूर्ति के पास जाते। हमारे देश में कम से कम 1000 संत हैं जिनके कम से कम 1,00,000 अनुयायी होंगे हर एक के, तो 10,00,000 तो ऐसे ही हो जाते हैं। अब मेरे सामने यह सवाल हमेशा रहा है कि जिस देश में 60,00,000 साधु हैं और 10,000 गुरु हैं आध्यात्मिक, वो देश गुलाम कैसे रहा? और अब भी गुलामी क्यों चल रही है उसकी? इसका कारण ये बाकी के जितने लोग हैं सब परलोकवादी हैं। मरने के बाद के जीवन का विचार है, मरने के इस तरफ का जीवन का विचार नहीं है। और हम सब इस पार वाले हैं। धर्म परलोकवादी होता है, धर्म में अध्यात्म नहीं होता। धर्म का संबंध परलोक से है, अध्यात्म का संबंध जीवन के साथ होता है। यहां का जीवन, मरने के बाद का भी जीवन, यह अध्यात्म है, लेकिन परलोक से कोई संबंध नहीं होता। अध्यात्म में स्वर्ग नरक वगैरह नहीं होते, धर्म में ये होते हैं। हमारा देश आध्यात्मिक नहीं है, धार्मिक है। इसलिए इस देश में मनुष्य की कीमत नहीं रही, मनुष्य का भाव नहीं रहा। सबसे सस्ता हमारे देश में मनुष्य है, गाय बैल से भी सस्ता, यंत्रों से भी सस्ता, पेड़ पौधों से भी सस्ता, सारी चीजें महंगी हैं, केवल मनुष्य सस्ता है। और इसका नाम अर्थशास्त्र रखा गया है। मैं हैरान हूं कि वो अर्थशास्त्र कैसा अर्थशास्त्र होगा जिसमें और सारी चीजों का मूल्य है सिवा जीवन के। हमारे यहां एक सज्जन की खेती है, बहुत बड़ी खेती है, यंत्र था कुएं पर, वो इंजन बिगड़ गया और वो कुछ ऐसा बिगड़ा कि दुरुस्त नहीं हो सकता था जल्दी। उसको दुरुस्त करने में जो कारीगर आया उसकी हड्डी टूट गई, तो उस पर नाराज हो रहा था मालिक कि तूने मेरे यंत्र को बिगाड़ दिया, उन्होंने कहा तो ये हड्डी टूट गई है, तो हड्डी तो दुरुस्त हो जाएगी लेकिन इंद्र का क्या होगा। उसकी हड्डी की कोई कीमत थोड़ी है, यंत्र 10,000 रुपए का है। जिस अर्थशास्त्र में हर चीज की कीमत ही होती है, किसी चीज का मूल्य नहीं होता, वो अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र नहीं है। क्या इसको आप बदलेंगे? आपने पूछा है कि हमारा पराक्रम किस तरह खर्च हो, इसको बदलने की है इच्छा? इसको बदलने की इच्छा नहीं है। इसी समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, इसी समाज में कमाई चाहिए, इस समय समाज को बदलने की इच्छा नहीं है। इसलिए वो पश्चिम की तरफ देख रहा है, किस तरफ देखे? आप लोग छोटे हैं, आपको यह मालूम नहीं है कि अंग्रेजों के आने से पहले इस देश में ब्राह्मणों के सिवा कोई पढ़ ही नहीं सकता था। विद्या सिर्फ ब्राह्मणों के ही लिए थी। मुसलमान आए, उन्होंने कुछ कायस्थों को पढ़ाया क्योंकि उनको मुंशियों की जरूरत थी। कुछ उर्दू पढ़े लिखे कायस्थ मुसलमानों के जमाने में हुए, लेकिन इस देश में करोड़ों मनुष्य हजारों वर्षों से ऐसे हैं जो निरक्षर रहे। अब उनमें अंग्रेजों के आने के बाद अक्षरों की उत्कंठा है, वो सीखना चाहते हैं, वो बाबू बनना चाहते हैं। जिनको हजारों वर्षों से कभी विद्या की संस्थाओं में प्रवेश ही नहीं मिला, विद्या का मंदिर कभी खुला ही जिनके लिए नहीं था, उनकी आकांक्षा यह है कि इन विद्यालयों में हम जाएं। तो यह पश्चिम से आई हुई चीज है, जिस पश्चिम को हम कोसते हैं। असल में पूर्व पश्चिम है ही कहां। मैं तो स्कूल मास्टर था, लड़कों को पढ़ा रहा था। हमारी राष्ट्रीय शालाएं ऐसी शालाएं थी कि जिसको जिस क्लास में बैठना हो आकर बैठ जाता था कुछ देर के लिए। तो मैं कुछ किस्से कहानियां सुनाता था तो लड़कों को मजा आता था। एक 10 साल का लड़का भी मेरे वर्ग में आकर बैठ गया। मैं सिखा रहा था किपलिंग की कविता कि पूर्व पूर्व है पश्चिम पश्चिम है, ये दो कभी नहीं मिलेंगे। तो और लड़के समझ रहे थे अच्छी तरह, अंग्रेजी कविता थी। तो 10 साल का लड़का समझ नहीं रहा था, खड़ा हो गया, किसकी कविता है? रडयार्ड किपलिंग की है, इसको नोबेल पारितोषिक मिला था। इतना बड़ा एक कवि और इतना बड़ा साहित्यिक था। अब वो तो छोटा लड़का था, वो उसके कोई बेचारे को विवेक तो था नहीं। क्या वो सब कुछ था लेकिन इसको भूगोल नहीं आता होगा। अब ये जवाब ऐसा था जो मेरे दिमाग में से नहीं निकल सकता था। मैं तो पढ़ा लिखा, पुस्तकों में मेरी विद्या है, अब उसकी अपनी विद्या थी। क्या क्यों रे तू ऐसा क्यों कह रहा है कि उसको भूगोल नहीं आता होगा? तो वो इतना भी नहीं जानता था कि ये पृथ्वी गोल है, इसमें पूर्व और पश्चिम है ही नहीं। इतनी सी बात वो नहीं जानता था। जो गोल है उसमें पूर्व और पश्चिम है कहां, जापान में जाने वाला आदमी अमेरिका में जाएगा और अमेरिका का आदमी आगे बढ़ा गया तो जापान में आ जाएगा, कहीं पूर्व और पश्चिम है। लड़कों और लड़कियों, ये विद्वानों ने और शास्त्रियों ने हमारे दिमाग में पैदा कर दिए भ्रम हैं। ये विद्या नहीं है, ये अविद्या है। ये मनुष्यों को नाक बांटती है। पूर्व और पश्चिम मनुष्य की योजनाएं हैं, ये कोई वास्तविकता है? पश्चिम यह संदेश लेकर आई कि हर लड़का पढ़ने का अधिकारी है। मनुष्य मात्र विद्या का अधिकारी है। ये चीज हमारे यहां नहीं थी, अंग्रेजों के साथ आई। अब यह अस्पृश्य है, यह आदिवासी है, यह किसान है, यह मजदूर है, यह तेली माली है, यह कभी इनके बेटे पढ़े नहीं थे, इनके बाप दादा कभी पढ़े नहीं, इनमें पढ़ने की आकांक्षा है। ये आया तो पश्चिम से, अंग्रेज नहीं आता तो अंबेडकर नहीं हुआ होता, अंग्रेज नहीं आता तो महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले नहीं हुआ होता। अंग्रेज आया इसलिए इस देश के पिछड़े हुए दलित लोग भी स्कूलों में जाकर पढ़ सके, साक्षर बन सके। तो गांधी की संस्थाओं में होते हुए भी आकर्षण पश्चिम का है, और वो पश्चिम का आकर्षण नहीं है, वो आकर्षण आधुनिकता का है। पश्चिम से आई इसलिए आधुनिकता उसे कहा। जापान की तरफ से सूर्य उगा निकलता हुआ दिखाई देता है, इसलिए लैंड ऑफ द राइजिंग सन, उस तरफ से वो आता है, इसलिए पश्चिम के देशों की तरफ से ये आधुनिकता आई। इस आधुनिकता का आज का मनुष्य, तरुण मनुष्य स्वागत करता है। इसलिए पश्चिम का आकर्षण है। दूसरा आकर्षण पश्चिम के वैभव का है। मित्रों, त्याग अलग चीज है और गरीबी बिल्कुल अलग चीज है। गरीबी त्याग नहीं है, उपवास नहीं है, भूखमरी उपवास नहीं। उपवास में से सांस्कृतिक विकास होता है, भूख में से सांस्कृतिक ह्रास होता है। जिस देश में दुर्भिक्ष है और भूख है, उस देश में आकांक्षा वैभव की होती है। मैकॉले ने शिकायत की है कि क्या इनका भूगोल है भारतवासियों का, इसमें तो दूध और दही के समुद्र हैं, और इनका भगवान दूध के समुद्र में रहता है। अब भाई, दूध के समुद्र में कोई नहाएगा, कोई रहेगा? लेकिन हमने अपने ईश्वर को तो दूध के समुद्र में सुलाया है क्योंकि भूखों का देश है, भूखा सपने दूध और दही के समुद्र के नहीं देखेगा तो और क्या देखेगा। इसको तटस्थ होकर देखिए हर चीज को, जो अंग्रेजों का है वो बुरा है, जो मुसलमानों का है बुरा है, इस तरह से हमको कुछ नहीं देखना है। दुनिया में जो जो चीज अच्छी है वो सब हमारी है, कहीं के भी हो, परो अपावन ठवर में कंचन तजतन कोय, भूरे पर कचरे में सोना पड़ा हुआ हो तो उसे कोई छोड़ नहीं देता। वहां से हम उठा लेते हैं, ये पश्चिम का आकर्षण है। तीसरा पश्चिम का आकर्षण है शस्त्र शक्ति का। सुनने में ये बात कुछ अटपटी लगेगी लेकिन है ये, जो देश नियत्था है, नियत्था से मतलब निशस्त्र है, अहिंसक नहीं, जबरदस्ती जो देश निशस्त्र होता है उसमें शस्त्र की आकांक्षा होती है, वो शस्त्र के सपने देखता है। तो हमारे देश में दुर्भिक्ष है, वस्तुओं की कमी है, इसलिए पश्चिम के वैभव की आकांक्षा है। इस देश में अहिंसा भी नहीं है और वीरता भी नहीं है, वीरता के बिना तो अहिंसा हो नहीं सकती है। गांधी के जमाने में थोड़ी देर के लिए एक झलक दिखाई दी, लेकिन वो तो गांधी का प्रकाश था, वो झलक गांधी की मजबूती की चमक थी, थोड़ी देर के लिए दिखाई दी। आज क्या है, पाकिस्तान जरा शरारत करे तो ये 60 करोड़ लोगों का देश डर जाता है, और डर कर क्या करता है, कभी रूस की तरफ दौड़ता है, कभी अमेरिका की तरफ और कभी चीन की तरफ। इनके भर पाकिस्तान से इस 60 करोड़ आदमियों का देश डरता है। यहां अहिंसा है, इस देश में अहिंसा है नहीं, ये माननी चाहिए, क्योंकि वीरता नहीं है। तो ये कारण है पश्चिम के आकर्षण के। पाकिस्तान के विरोध में हमको या तो अमेरिका की सहायता चाहिए, या रूस की चाहिए, या चीन की चाहिए। अब ये सहायता तो शत्रुओं की हो सकती है ना, आर्थिक क्षेत्र में 3 से मदद नहीं चाहिए, अमेरिका से चाहिए, रूस से चाहिए। तो आर्थिक क्षेत्र में भी मदद पश्चिम से चाहिए, वीरता के क्षेत्र में भी मदद पश्चिम से चाहिए। अब जो मदद करने वाला होता है वो श्रेष्ठ हमेशा होता है, मदद मांगने वाला श्रेष्ठ नहीं होता है। ये इस देश का आज का राजकारण है, मूलभूत राजकारण। ये दिल्ली का राजकारण छोड़ दो, अहमदाबाद का राजकारण छोड़ दो, उसका जिन्हें शौक है उसे उन्हें करने दो। तुम तरुण क्या करो, इस देश को इस स्थिति में से उबारो। और वो तभी हो सकता है जब हमारे देश में शस्त्र निरपेक्ष वीरता का विकास है। शस्त्र निरपेक्ष वीरता इसलिए कि चीन, रूस और अमेरिका के मुकाबले के शस्त्र हमारे पास कभी नहीं हो सकेंगे, और जब होंगे तब इनका और आगे बढ़ चुके हों। इनकी शस्त्रों की होड़ में हम कभी जीत नहीं सकेंगे। इसका एक ही उपाय है कि यहां शस्त्र निरपेक्ष वीरता का विकास हो। जाने दीजिए अहिंसा, सत्याग्रह सबको जाने दीजिए, लेकिन ऐसी वीरता की आवश्यकता है जो शस्त्र निरपेक्ष हो। किसी के भरोसे भारतवर्ष नहीं जिएगा। अपनी इज्जत के रक्षण के लिए भी दूसरे का भरोसा नहीं करेगा। एक आदमी के घर शादी थी बेटे की, तो सोने की कंठी चाहिए थी। अब कहां से लाए, तो साहूकार के घर गया। उसने कहा साहूकार ने कि सोने की कंठी तो देता हूं, लेकिन इसके लिए तुझे अपनी गर्दन गिरवी रखनी होगी, मॉर्गेज करनी होगी, रहन करनी होगी। ठीक है, अगर खो गई तो गर्दन उतार लेना। शादी में सब लोग आए, बड़ी तारीफ की कि बड़ी अच्छी कंठी है तुम्हारी, बहुत सुंदर है। कहा बहुत सुंदर है, कोई ऐसे थोड़ी लाया हूं, बहुत त्याग करके लाया हूं। क्या गर्दनी गिरवी रख दी। सारे देश की स्वतंत्रता को मॉर्गेज करके क्या हम सहायता लेने चाहते हैं। पूछते हैं आप कि क्या हम तरुण कर सकते हैं, यह सब सवाल हैं, यह समस्याएं हैं, जिनका जवाब मेरी पीढ़ी तो दे ही नहीं सकी, मेरे बेटों की पीढ़ी भी नहीं दे सक रही है। क्या तुम भी कहोगे कि तुम नालायक तो हम क्यों नहीं नालायक, तुम्हारी औलाद है। मत कहो, कहो कि तुम नालायक हो तो तुम्हारी नकल हम नहीं बनेंगे, प्रतिलिपि हम नहीं बनेंगे। तो मैंने अपने ढंग से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजकारण का स्वरूप आपके सामने खोला है। बहुत भूत में शक्ति नहीं है, बहुत बढ़ाऊंगा नहीं। एक बात और कहनी है, सवाल भी पूछा है मुझे, सहजीवन का अर्थ क्या है, मैं क्या मतलब है मेरा। हमारे देश में मनुष्य मनुष्य के साथ रहा ही नहीं, ये मेरी शिकायत है। हिंदू मुसलमान साथ नहीं रहे, पाकिस्तान बन गया। क्या हिंदू हिंदू साथ में रहे, हर गांव में और हर शहर में जातिस्तान है। ये मोहल्ला अक्षेरियों का है, ये ब्राह्मणों का है, ये मालियों का है, ये कण्वियों का है, पाकिस्तान तो मुसलमानों के आने के बाद बना, जातिस्तान नहीं होते तो पाकिस्तान होता ही नहीं, जातिस्तान में से पाकिस्तान आया, पाकिस्तान में से अब भाषिस्तान आ रहे हैं, जो इस देश की राजनीति है। क्या जीवन कभी रहा ही नहीं, ट्रेन में चलता हूं, मुसलमान होता है या सिख होता है, 12 बजते ही अपना डिब्बा खोलता है, मुझसे पूछता है, पूछता भी नहीं, कहता आइए साथ खाएंगे। और मैं तो खा भी नहीं सकता हूं क्योंकि वो अंडा वगैरह होता है, लेकिन वो कहता है। और हिंदू अगर होता है तो मेरी जात का उसको तो पता नहीं होता, तो दूसरी तरफ को मुंह कर फेर कर डिब्बा खोलता है। तो दो हिंदू ट्रेन में जब चलते हैं तो 12 बजे दोनों का सहजीवन पीठ के पर से होता है। अब ये जो ऋषि मुनियों की, संतों की, वेदों की, उपनिषदों की संस्कृति है, इसमें भंगी कहां है, इसकी कोई जगह है, कैसे उसको अभिमान है। तो वो एक नई अस्मिता की खोज में है, इस देश का अस्पृश्य एक नई अस्मिता की खोज में है, जो हमारी संस्कृति में और हमारी परंपरा में उसके लिए कहीं नहीं। कभी किसी महात्मा ने, धर्म संस्थापक ने यह विचार नहीं किया, अंग्रेजों के बाद से जो नेता आए वो ये विचार करने लगे कि क्या उनका भी कोई स्थान है, उनकी भी कोई जगह है। यह सहजीवन का एक पहलू है, ब्राह्मण और भंगी पड़ोस में नहीं रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। और साथ रहने का मतलब है एक दूसरे के जीवन में प्रवेश करेंगे। भंगी के जीवन में ब्राह्मण का प्रवेश होगा, ब्राह्मण के जीवन में भंगी का प्रवेश होगा। इसलिए गांधी ने सिर्फ अस्पृश्यता निवारण नहीं कहा, स्पर्श भावना। हमारे देश में स्त्री और पुरुष साथ कभी नहीं रहे, एक मकान में रहे, अगल बगल में रहे, लेकिन साथ कभी नहीं रहे। वो तो उनके वश में नहीं था, उनके वश में होता तो वो दुनिया को दो गोलार्धों में बांट देते, एक स्त्रियों का और एक पुरुषों का। रेल के डिब्बे वगैरह तो किए, स्कूल कॉलेज भी बनाए, लेकिन ये नहीं कर सके। दिक्कत क्या थी, स्त्री के बिना पुरुष पैदा नहीं होता, पुरुष के बिना स्त्री पैदा नहीं होती, तो करेंगे क्या। हर पुरुष के मां होती है और हर स्त्री के पिता होता है, इसलिए इनको बिल्कुल अलग नहीं कर सके। लेकिन भावना सहजीवन की नहीं रही, अलगपन की रही। नतीजा क्या हुआ, स्त्री कभी मनुष्य नहीं बनी, माता देवता है, पत्नी दासी है, पुरुष मनुष्य है, स्त्री उसकी संपत्ति है। इसलिए स्त्री के साथ वो चाहे जो कर सकता है। ये स्थिति सहजीवन की नहीं है। सहजीवन की स्थिति के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि स्त्री को किसी पुरुष से डर न रहे, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त यह है कि पुरुष को किसी स्त्री से लालच न रहे। जैसे खाने पीने की चीज, ऐसा पुरुष स्त्री को मांगता है, वस्तु मांगता है। इसलिए लड़कियां जहां बाहर निकलें तो लड़के उनकी तरफ ऐसे देख रहे देखते हैं जैसे शेर बकरी को देख रहा है। जिसको आप विषय मानेंगे वो मनुष्य बन सकता है। तो दोनों पशु हो जाते हैं, पुरुष और स्त्री दोनों। ये मैं कोई ब्रह्मचर्य की बात नहीं कह रहा हूं, सहजीवन की बात है। यह सहजीवन की शर्त है कि पुरुष स्त्री के शरीर को आक्रमण का विषय न माने और स्त्री पुरुष को अपना पहरेदार रक्षण करता न माने। क्योंकि अब स्त्री की यह स्थिति है, भयानक स्थिति है। डर भी पुरुष से है और रक्षण भी उसी का चाहिए। यानी बकरी की यह हालत है कि शेर से डरती है और रक्षण भी शेर का ही चाहती है। बहुत भयानक स्थिति है। अकेली स्त्री अब इस समस्या को हल नहीं कर सकेगी। लड़के और लड़कियों को मिलकर इस समस्या को हल करना चाहिए। हर गांव में, हर शहर में, हर रास्ते पर, हर क्लब में, हर बाग बगीचे में, हर पार्क में लड़की को लड़के से डर नहीं हो। और लड़के को स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपनी वस्तु माने, यह अधिकार नहीं होगा। एक सवाल है किया गया था कि शिक्षण की क्या भूमिका होगी। यह भूमिका होगी बस यहां मैं इसका उपसंहार करता हूं। पहली भूमिका शिक्षण की यह होगी कि अब इस देश में आगे चलकर कोई हिंदू मुसलमान नहीं रहे। संगत धर्म नहीं हो, उपासना होगी, नैतिकता होगी, अध्यात्म होगा। सारे मंदिर, सारी मस्जिदें, सारे गिरजाघर मनुष्य मात्र के लिए खुले होंगे। मस्जिद में जाने वालों का एक समाज, मंदिर में जाने वालों का दूसरा समाज, यह नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। यह शिक्षण में से आएगा, यह संस्कार। दूसरे, अब इस देश में कोई मालिक, कोई नौकर, कोई महाजन, कोई मजदूर नहीं रहेगा। ये संबंध बदल जाएंगे। तो तो क्रांतिकारी संस्था में यह रिश्ता नहीं रहेगा। ये मालिक है, यह नौकर है, यह मजदूर है, यह महाजन है, यह रिश्ता अगर आज की संस्थाओं में है तो तुम्हारी संस्थाओं में नहीं रहेगा। इसमें से गरीबी अमीरी जाएगी, ये दो चीजें हुई। तीसरा, कोई ब्राह्मण और कोई भंगी नहीं रहेगा। सभी मनुष्य होंगे, ये तीसरी चीज। और चौथी चीज, कोई गुजराती, कोई मराठी, कोई बंगाली, कोई कानड़ी नहीं रहेगा। सारे भारत के नागरिक होंगे। ये चार चीजें हैं, ये सिलेबस है आगे के लिए। शिक्षण में से ये चार चीजें आनी चाहिए, जिन पर हमारे देश का भविष्य निर्भर है। इसमें गांधी, मार्क्स, मोरारजी, इंदिरा, कोई किसी का विरोध नहीं हो सकता है। कांग्रेस, जनता पार्टी, उनका विरोध होना नहीं चाहिए। पार्टी है इसलिए विरोध करेंगे तो अलग चीज है। जैसे मंदिर का भगवान अलग है और मस्जिद का भगवान अलग है, तो दोनों भगवान शैतान हो जाते हैं, क्योंकि इसके ज्यादा भगवान हुए कि वह शैतान ही बन जाते हैं। एक है तभी तक भगवान रहता। इस तरह से ये जो समस्याएं हैं, ये राष्ट्रीय समस्याएं हैं, ये किसी दल की नहीं है। तो मैंने गिना दी उपसंहार में जिन जिन चीजों को आप कर सकते हैं, शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर। आपका ये काम है, क्योंकि तरुण अगर इसको नहीं करेंगे तो करेगा कौन? मेरी पीढ़ी को अब कुछ नहीं चाहिए। मुझसे तरुण ने क्या कई बार पूछा कि आप हमसे क्या चाहते हैं। मैंने कहा सिर्फ कंधा चाहता हूं। तुम्हारा कंधा मजबूत है और मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं। जब तक जिंदा हूं तो मुझे अपने कंधे पर ढो, और मर जाऊं तो मेरी अर्थी भी अपने कंधे पर ले जाओ। पुरानी पीढ़ी के साथ ये सदव्यवहार है, ये सदव्यवहार तुम करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन अपने लिए एक काम करो, दूसरों के कंधों पर से उतर जाओ। इसकी आवश्यकता है। ये प्रेरणा, ये बुद्धि, ये शक्ति भगवान आपको दे, यही प्रार्थना है, यही आशीर्वाद है। सबको धन्यवाद, नमस्कार।